अरे धामरी जय हो। जय गोपी जन वाला भय गिरिवार जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो। जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नेतई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री पंचतत्व की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। एक आप लोगों से प्रार्थना है कि पुस्तक की जो है इसकी अच्छी हालत बनाओ, इसका कपड़े का अच्छा कवर बनाइए। हमने तो बनाया है अच्छा कवर और उसको जो है साफ भी रखना चाहिए। अगर गंदा हो जाए तो उस कपड़े कवर निकाल करके साफ करिए, है ना। ये भी भागवत सेवा है ना। नित्यम भागवत सेविया, इसको देख करके किसी को कैसा लगेगा, श्रद्धा नहीं होगी ना। दोनों दोनों की हालत बड़ी ख़राब है। हम लोग क्या करते हैं, जब किताब जो किताब चल रही है उसका कवर निकाल के सुरक्षित रख लेते हैं, और जब ये पूरी समाप्त हो जाएगी फिर कवर लगा करके रख देंगे। तो कवर को जो है हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि कवर हमेशा पकड़ने में उठाने रखने में ख़राब हो जाता है। तो अब तो ये मतलब काम का नहीं रहा, लेकिन इसका जो है कपड़े का अच्छा कवर बनाइए सिल करके, और जब चाहे तो निकाल भी रहें, ठीक है ना। ये बहुत आवश्यक है भागवत सेवा। इसका धागा कहाँ है, धागा नहीं, अच्छा धागा टूट गया, अच्छा अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 12, अध्याय का नाम है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। तो इसमें श्लोक संख्या 12-13 का तात्पर्य नहीं है, श्लोक संख्या 14 लिखा है श्वेत पट में, तो 12-13 हम पढ़ेंगे। मन्युर्मनुर्महिनसो महांच्छ वैर तद्ध्वजहं उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं, मन्यु मनु महिनस महान शिव ऋतध्वज उग्ररेता भव काल वामदेव तथा धृतव्रत। धीर धृति रस लोमाचा नियोत्सर्पी ऋताम रिलांबिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र त्रे स्त्रियः। हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्राणी कहलाती हैं, और वे इस प्रकार हैं, धी धृति रसला उमा नियुत सर्पी इला अंबिका इरावती सुधा तथा दीक्षा। अब मेरे पीछे बोले सब लोग, गृहाणेतानि नामानि स्थानानि च योषणः। गृहाणेतानि नामानि स्थानानि च योषणः। एधि सृजय प्रजा भावी प्रजानामसि यत्पतिः। गृहाणेतानि नामानि स्थानानि च संयोषणः। एभिः सृजय प्रजा भावी प्रजानामसि यत्पतिः। गृहाणेतानि नामानि स्थानानि च संयोषणः। एभिः सृजय प्रजा भावी प्रजानाम् अस्ति यत्पतिः। बोलिए,
गृहाणेतानि नामानि
स्थानानि
च संयोषणः।
प्रजावाहि
प्रजानामस्य यत्पतिः।
वैष्णो देवी देखिए इसमें जो सृज शब्द है ना, सृज नीचे की पंक्ति में सृज है, तो उसको आप क्या पढ़ते हैं, सृज पढ़ते हैं या सृज पढ़ते हैं? सृज। तो ये जानने के लिए मैं बता रहा हूँ, जानना चाहिए। जैसे कृष्ण क्रा नहीं है, क्री है, काम है जो रा है ना, तो वो जो है छोटी की मात्रा इसमें है ना, कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण नहीं बोलते ना। ऐसे वृक्ष वाम में जो रा है वो छोटी की मात्रा साथ में लगी है, वृक्ष, वृक्ष नहीं बोलते, कुछ लोग वृक्ष बोलते हैं, वृक्ष नहीं है, वृक्ष है, कृष्ण है। ऐसे सृज, ठीक है ना, शब्दार्थ बोलिए, गृहाण स्वीकार करो, एतानी इन सारे नामानी विभिन्न नामों को, स्थानानी तथा स्थानों को, च भी सयोषणः पत्नियों समेत ए भी उनके द्वारा सृज उत्पन्न करो, प्रजाः संताने भावी ही बड़े पैमाने पर, प्रजानां जीवों के असी तुम हो, यत क्योंकि पति ही स्वामी। अनुवाद मेरे पीछे बोली, हे बालक अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो, और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम श्लोक के शब्दों पर विचार करेंगे। श्लोक के शब्द क्या हैं? तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि किसने श्लोक कहा ये? रोज नहीं आते ना आप लोग में से? कितने लोग रोज आते हैं, रोज बैठते हैं क्लास में? गोपी सर रोज नहीं आ पाते है ना? अगर रोज नहीं आ पाते तो फिर रोज श्लोक का अनुवाद तात्पर्य पढ़ना चाहिए। ये मेरा नियम है मंदिर में, अब आज मैं नहीं हूँ क्लास में, तो श्लोक का अनुवाद तात्पर्य मैं पहले से ही पढ़ लिया हूँ, अगर पहले नहीं पढ़ा तो बाद में फिर पढ़ना। तो इससे कथा का जो प्रसंग है वो अपने को पता रहता है। हाँ तो कौन बताएगा, कौन कह रहे हैं श्लोक? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? शिव जी से कह रहे हैं, रुद्र, रुद्र से कह रहे हैं, है ना? क्या कह रहे हैं? ग्रहण एतानी नामानी, ग्रहण करो इन नामों को। कितने नाम दिए? 11 नाम दिए, वैसे 12 नाम है, रुद्र एक नाम दिया है ना, लेकिन 11 की संख्या बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि 11 नाम तुमको मैं दे रहा हूँ, और ये रुद्र नाम ये तो तुम्हारा मुख्य नाम है, तो सभी रुद्र हैं, 11 रुद्र। तो ब्रह्मा जी 11 की संख्या विशेष निश्चित कर रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए ये संख्या है, इसलिए 11 नाम दिए, 11 रुद्र कहलाते हैं, 11 रुद्र हैं। ग्रहण एतानि नामानि, इन 11 नामों को ग्रहण करो। फिर स्थानानि, स्थान भी 11 दिए, 11 स्थान दिए हैं, तो 11 स्थानों को ग्रहण करो। फिर चसे जोषणः, और पत्नियों समेत 11 पत्नियां भी दी, 11 पत्नियां भी दी, 11 नाम दिए, 11 स्थान दिए, 11 पत्नियां दी हैं, ए भी सृज प्रजा भावी, तो इनके द्वारा तुम अब जो है बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, ज्यादा संख्या में प्रजा उत्पन्न करो। प्रजा नाम असी यत पति, यत माने क्योंकि, क्योंकि तुम प्रजाओं के पति हो, प्रजानाम असि यत्पति, क्योंकि तुम प्रजाओं के पति हो, है ना। तो प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं कि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, क्योंकि और भी कई प्रजापति हैं, जैसे दक्ष, दक्ष भी प्रजापति हैं, आगे चल करके मनु उत्पन्न होंगे, वो भी प्रजापति होंगे। तो उत्पन्न करो, प्रजा उत्पन्न करो, है ना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि ब्रह्मा जी की एक चिंता है कि सृष्टि भरना है। अभी हमारी चिंता नहीं होती सृष्टि को भरना है, जनसंख्या तो बहुत है, अब तो यही है कि वे कम से कम जनसंख्या हो, है ना। तो लेकिन उस समय जनसंख्या बढ़ानी है, हाँ उत्पन्न करो। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि तुम जनसंख्या उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजाओं के पति हो, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की। रुद्र के पिता के रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्र के लिए पत्नियां, उसके लिए वास स्थान तथा उसके नामों का भी चयन किया। तो प्रभुपाद बहुत ये विचार करने वाली बात बता रहे हैं तात्पर्य में, बहुत विचार करने वाली है, कि रुद्र के पिता के रूप में ब्रह्मा जी ने स्वयं चुना मेरे पुत्र को कौन कौन से स्थान मिलने चाहिए, है? और मेरे पुत्र के नाम भी कैसे होने चाहिए, और मेरे पुत्र की पत्नियां भी कैसे होनी चाहिए, तो ये सब चयन किया, है ना। तो प्रभुपाद जो है इस बात को जो है विशेष रूप से महत्व दे रहे हैं, है? कि क्योंकि प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं ये शिक्षा प्रद हैं, बहुत इसमें शिक्षा है, ना? तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये स्वाभाविक है कि पुत्र अपने पिता द्वारा चुनी गई पत्नी को स्वीकार करे, जिस तरह वो अपने पिता द्वारा रखे नाम को या पिता द्वारा प्रदत्त संपत्ति को स्वीकार करता है। यहां संपत्ति का मतलब स्थान, तो पिता ने जो है स्थान दिया अपने पुत्र को, ये 11 स्थान तुम्हारे हैं, तो इनमें रहो, तो पुत्र जो है वो स्थान स्वीकार करता है, अपने लिए स्थान का चुनाव नहीं करता पुत्र, या संपत्ति, घर मकान को भी संपत्ति कहते हैं ना, तो स्थान को भी संपत्ति, यहाँ प्रभुपाद स्थान के लिए संपत्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो है अपने पुत्र के लिए जो भी संपत्ति है या स्थान है तो वो चुन रहे हैं, तुम्हारे लिए स्थान है, है ना। और पुत्र जो है उनको स्वीकार करता है, पुत्र जो है इसमें कुछ अपनी ओर से सुझाव नहीं देता कि नहीं नहीं ये नहीं, ये चाहिए ये नहीं, ये होना चाहिए ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये नहीं है, पिता ने जो दिया उसको स्वीकार करे पुत्र, क्योंकि पिता अपने पुत्र की जो आवश्यकताएं हैं उनको अच्छी तरह जानता है, पुत्र भी नहीं जानता अपनी आवश्यकताओं को उतनी अच्छी तरह से, और जीवन भर में कैसी सुख सुविधाएं होंगी इन चीज़ों के द्वारा, तो पुत्र को उतना अनुभव नहीं है, पिता को ज़्यादा अनुभव है। तो पिता स्वयं चयन करते हैं, चुनाव करते हैं पुत्र के लिए, नाम भी पिता देता है, तो पुत्र जो है ये नहीं कहता नहीं नहीं मैं ये नाम नहीं लूँगा, मुझे ये नाम चाहिए वो नाम चाहिए, नहीं है ना। तो नाम भी, तो ब्रह्मा जी ने नाम दिए, 11 नाम दिए, 11 स्थान दिए, 11 पत्नियाँ दी, है ना। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि संसार की जनसंख्या बढ़ाने का ये सामान्य तरीका है, दूसरी ओर चारों कुमार हैं जिन्होंने अपने पिता की भेंट स्वीकार नहीं की। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं, एक दूसरी भी शिक्षा मिलती है, एक शिक्षा ही मिलती है कि जनसंख्या बढ़ाना है, संतान उत्पन्न करना है, विवाह का जो उद्देश्य है वो होता है संतान उत्पन्न करना, संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह होता है। आजकल तो विवाह का उद्देश्य होता है इंद्रिय तृप्ति, और संतान ना हो, या क्या बोलते हैं, 2 या 3 उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद नहीं, कुछ ऐसा नारा लगाए ना, हम दो हमारे दो, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति करो लेकिन बच्चे ना पैदा हों, है ना। तो ये जो उद्देश्य है ये गलत है, विवाह का उद्देश्य ये नहीं है। विवाह का उद्देश्य है संतान उत्पन्न करना, और अगर संतान उत्पन्न नहीं करना है तो इंद्रिय तृप्ति नहीं, तो केवल इंद्रिय तृप्ति विवाह का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि दूसरी ओर चारों कुमार हैं जिन्होंने अपने पिता की भेंट स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे बहुत से पुत्र उत्पन्न करने के कार्य की अपेक्षा बहुत उच्च पद पर थे। चार कुमार तो चार कुमारों ने सृष्टि का कार्य नहीं किया। वैसे यहाँ तो पत्नी से पुत्र उत्पन्न करने वाली बात नहीं है, कि आगे चल करके मनु शत्रुपा जब होंगे तब ब्रह्मा जी आदेश देंगे कि अब तुम लोग जो है पत्नी से संतान उत्पन्न करो। लेकिन प्रभुपाद शिक्षा के तौर पर ये बता रहे हैं कि चार कुमारों ने पुत्र बहुत से पुत्र उत्पन्न करने के कार्य की अपेक्षा बहुत उच्च पद पर थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अपने पिता की भेंट स्वीकार नहीं की, तो ब्रह्मा जी उनको भी कुछ विशेष स्थान देना चाहते थे, यहाँ रहो और संतान उत्पन्न करो, चाहे संतान अपने शरीर और मन से ही उत्पन्न करें। क्योंकि ब्रह्मा जी भी संतान उत्पन्न कर रहे हैं तो पत्नी से थोड़ी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जो संतान उत्पन्न कर रहे हैं वो पत्नी से थोड़ी कर रहे हैं, अपने शरीर से और मन से ही उत्पन्न कर रहे हैं। चार कुमारों को अपने मन से उत्पन्न किया, और जो रुद्र हैं वो उनके क्रोध से उत्पन्न हुए, भ्रुकुटि के बीच में क्रोध उत्पन्न हुआ उससे उत्पन्न हुए। तो चार कुमार भी जो है, चार कुमारों को भी आदेश दिया कि मैंने तुम चार पुत्रों को अपने मन से उत्पन्न किया है तो तुम भी अपने मन से और शरीर से कम चार चार और उत्पन्न करो, फिर वो और उत्पन्न करें। इन चार कुमारों ने ये बात स्वीकार नहीं की, उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की, क्यों? ज़्यादा ऊंचे पद पर थे, क्योंकि उनका जो मन है वो ज़्यादा आत्म केंद्रित था। तो जहाँ आत्म केंद्रित मन होता है और ध्यान में लगता है मन, तो प्रजा उत्पन्न करने के लिए जब मन को एकाग्र करेंगे तो बाधा पड़ेगी, ध्यान में बाधा पड़ेगी। तो चार कुमारों ने अपने शरीर और मन से भी बच्चे पैदा करने का जो कार्य है वो नहीं लिया, ब्रह्मा जी उनको कार्य दे रहे हैं, और ब्रह्मा जी कार्य दे रहे हैं क्योंकि उनकी चिंता है और उनको भगवान का आदेश है सृष्टि करने के लिए, तो वे आदेश दे रहे हैं, तो ब्रह्मा जी की गलती नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि चार कुमारों की भी गलती नहीं, कि वे ब्रह्मा जी के आदेश को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, और विरोध भी हो रहा है, तो कभी कभी विरोध होता है, लेकिन दोनों पक्ष सही होते हैं अपनी अपनी जगह पर। और ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी भी अपने क्रोध को रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनका पक्ष सही है कि वे ब्रह्मा जी की बात को नहीं मान रहे हैं, इसलिए नहीं मान रहे कि वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, बल्कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में उनको बाधा होगी, इसलिए ब्रह्मा जी की बात नहीं मान रहे हैं। तो प्रभुपाद जो है चार कुमारों के पक्ष में भी यहाँ बता रहे हैं कि एक उदाहरण प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरी ओर चारों कुमार हैं जिन्होंने अपने पिता की भेंट स्वीकार नहीं की। शिव जी जो है ब्रह्मा जी की भेंट स्वीकार कर रहे हैं, तो इनका पक्ष भी सही है। चार कुमारों ने ब्रह्मा जी की भेंट नहीं स्वीकार की, उनका पक्ष भी सही है। लेकिन कोई लड़के नालायक निकल जाते हैं तो वे अपने पिता की बात नहीं मानते हैं, लेकिन अपने मनमाने तरीके से इंद्रिय तृप्ति के कार्य करते हैं, तो फिर वो नालायक। इन चार कुमारों को नालायक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं ब्रह्मा जी की अवज्ञा कर रहे हैं, बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए। तो इसलिए चार कुमारों का पक्ष भी जो है अपने आप में सही है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं जिस तरह पुत्र उच्च उद्देश्य के लिए अपने पिता के आदेश को अस्वीकार कर सकता है, उसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। क्या प्रभुपाद कहते हैं? पुत्र उच्च उद्देश्य के लिए पिता के आदेश को अस्वीकार कर सकता है, पिता की बात ना माने। क्या पिता की बात नहीं माने? पिता कहता है विवाह करो और घर बसाओ, बच्चे पैदा करो, और अगर पुत्र जो है नहीं स्वीकार करता अपने पिता को तो, लेकिन तरीका ये नहीं है, है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तरीका ये नहीं है। तरीका फिर भी कोमल होता है, कोमलता से ही अपने पिता की बात को स्वीकार नहीं करना। तो चार कुमारों ने उल्टा जवाब नहीं दिया, लेकिन स्वीकार नहीं किया, अपने पिता की बात को स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन क्रोध निकल आया। तो चार कुमारों को उन्होंने क्रोध नहीं छोड़ा अपना, चार कुमारों के ऊपर उन्होंने अपना क्रोध नहीं छोड़ा, चार कुमारों को श्राप नहीं दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, है ना। तो ऐसा ब्रह्मा जी ने, लेकिन क्रोध आया उनको, तो क्रोध भी जो है एक बच्चे के रूप में निकल आया, तो रुद्र। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस तरह पुत्र अपने उच्च उद्देश्य के लिए अपने पिता के आदेश को अस्वीकार कर सकता है, उसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। तो पिता भी पुत्रों का पालन करने से या पुत्रों को उत्पन्न करने से भी जो है इनकार कर सकता है। विवाह के बाद भी कुछ भक्त हैं वो पुत्र उत्पन्न नहीं करते, तो पुत्र उत्पन्न नहीं करते तो इंद्रिय तृप्ति भी नहीं करते, सहवास भी नहीं करते, तो ये भी ये भी अच्छा है, तो इसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन दोष होता है कि जब इंद्रिय तृप्ति करें, सहवास करें और बच्चे उत्पन्न ना होने दें, ये ध्यान रख करके भी बच्चा नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए भार है, और इंद्रिय तृप्ति करें, सहवास करें, तो ये जो है बंधन है, इसमें बंधन है, इसमें दोष है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, तो प्रभुपाद अंत में यही बता रहे हैं कि पिता भी पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। तो वैसे तो पिता जो है संन्यास अगर लेता है, संन्यास लेता है तो विधि यही है कि जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए और अपनी माता की देखभाल करने लायक ना हो जाए, घर चलाने लायक ना हो जाए, तब तक पिता को संन्यास नहीं लेना चाहिए। कर्दम मुनि ने भी माता देवभूति को जो है वचन दिया था, विवाह के पहले वचन दिया था, मैं विवाह इस शर्त पर करूँगा कि जब पुत्र हो जाएगा तो मैं संन्यास ले लूँगा, और देवभूति ने मान लिया था। तो फिर नौ कन्याएं हुई तो कर्दम मुनि संन्यास लेना चाहे थे, तो देवभूति ने कहा कि ये कन्याएं तो मेरी रक्षा नहीं करेंगी, आप एक पुत्र दीजिए मुझे। और कर्दम मुनि को याद आया कि हाँ भगवान ने स्वयं कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, तो फिर वो जो है देवभूति के साथ रहे और कपिल भगवान ने जन्म लिया, और कपिल भगवान ने जब जन्म लिया तो कर्दम मुनि ने कपिल भगवान से आज्ञा ली है कि आप माता की देखभाल करेंगे तो मैं आपकी आज्ञा से अब संन्यास ले लूँ। तो कपिल भगवान ने आज्ञा दी अपने पिता को, तो संन्यास लेने की विधि सामान्य विधि तो यही है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि अगर किसी पिता को या किसी पति को अगर ऐसा लगे कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है और जीवन का कुछ भरोसा नहीं है कि मैं पुत्र उत्पन्न करूँ और पुत्र फिर कब बड़ा होगा, तब तक पता नहीं मेरा जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, और मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो ऐसे भी छोड़ सकता है। ऐसे भी वो संन्यास ले सकता है। श्री चैतन्य ने संन्यास लिया तो घर में माता वृद्धा थी, और पत्नी नवयुवती थी और घर में कोई पुत्र भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है संन्यास ले लिया। तो ये संन्यास इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं था कि कोई व्यक्ति जो है अपनी बूढ़ी माता को छोड़ दे, अपनी जवान पत्नी को छोड़ दे और फिर जो है कुछ और दूसरे तरह के इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लग जाए, तो वो नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी पत्नी और माता को छोड़ करके संन्यास लेते हैं, तो ये जो है शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है। धर्म की स्थापना भगवान करते हैं, तो भगवान ने धर्म की स्थापना की। ऐसी स्थिति में कोई पति जो है अपनी पत्नी को छोड़ के संन्यास ले लेता है और कोई पुत्र भी नहीं है जो उस अपनी माता की रक्षा करे, तो भगवान रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। तो माता की और पत्नी की रक्षा फिर भगवान करते हैं। क्योंकि उसने जो है अपना धर्म छोड़ करके भगवान की शरण ली है, तो भगवान उसके धर्म की रक्षा करेंगे। उसका धर्म था कि अपनी पत्नी की रक्षा करे और अपनी माता की रक्षा करे, तो उसने धर्म छोड़ दिया और कृष्ण की शरण ली, तो कृष्ण कैसे उसके धर्म है को लोप करेंगे? कृष्ण क्यों नहीं उसके धर्म की रक्षा करेंगे? तो श्री चैतन्य ने अपनी माता सची से फिर यही कहा था कि मैं, हे माता, मैं तुम्हारे इस जीवन के और अगले जीवन का सब भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। जब संन्यास लिया तो सची माता से कहा कि तुम्हारे इस जीवन का भी और अगले जीवन का भी भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। तो कैसे लिया? मनुष्य की रूप में नहीं कह रहे हैं, वो तो अब भगवान के रूप में बोल रहे हैं। श्री चैतन्य भगवान के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि कोई मनुष्य तो नहीं ऐसा कह सकता है माता को, अपनी माता को छोड़ के संन्यास ले तो कहे कि मैं तुम्हारे इस जीवन का भार और अगले जीवन का भार लेता हूं। कहाँ, उसने तो भार छोड़ दिया है, अब तो कृष्ण को प्राप्त करने का भार उसने उठाया है, तो वो माता के इस जीवन का भार कैसे लेता है और अगले जीवन का भार वो कैसे लेगा? नहीं, कृष्ण लेते। यहां पर यह दिखाया है चैतन्य, श्री चैतन्य ने, कि उन्होंने जो है मनुष्य के रूप में अपनी माता पत्नी का त्याग कर दिया, तो कृष्ण ने जो है उनकी माता और पत्नी का भार ले लिया। तो इस जीवन का और अगले जीवन का पूरा भार जो है माता और पत्नी का कृष्ण ने लिया है, तो कृष्ण लेते हैं। तो यहां पर ये कुछ बातें हैं जो तात्पर्य से हमने चर्चा की हैं। अब चूंकि ब्रह्मा जी शिव जी से बोल रहे हैं, तो फिर हमने विचार किया कि चौथे स्कंद में भी जो है ब्रह्मा जी शिव जी से कुछ बात कर रहे हैं, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अभी चौथे स्कंद में तो आप लोग नहीं पहुँचे, तो चौथे स्कंद के अध्याय 6 में ब्रह्मा जी शिव जी के विषय में कुछ बताते हैं देवताओं को, और फिर शिव जी से भी बात करते हैं। तो ये घटना उस समय की है जब दक्ष ने शिव जी के साथ द्रोह किया और उस द्वेष की भावना को देख करके दक्ष की जो पुत्री थी सती और शिव जी की पत्नी थी, उन्होंने शरीर त्याग दिया और दक्ष इतना कठोर हो गया कि अपनी पुत्री को उसने मतलब कोई प्यार भरे शब्द भी नहीं कहे, ना प्यार से देखा वो ऐसे, क्योंकि शिव जी से द्वेष हो गया उसको, तो अपनी पुत्री से भी उसको द्वेष हो गया कि अब ये मेरी पुत्री नहीं है तो मेरे शत्रु की पत्नी है, तो अपनी पुत्री को भी जो है उसने प्यार भरी नजर से नहीं देखा, स्नेह नहीं दिखाया है। और पुत्री ने भी समझ लिया कि अब ये मेरा पिता नहीं है, तो अपने पिता की निंदा करती हुई पुत्री ने शिव जी के साथ अपना संबंध स्थापित करके कि मेरे जन्म जन्म के पति वही हैं और ये मेरा किसी जन्म का पिता नहीं है, और इस पिता ने जो है मुझे शरीर दिया है तो मैं अपने शरीर को त्यागती हूँ, क्योंकि अपने पिता का मैंने त्याग कर दिया है तो अपने पिता का दिया हुआ शरीर भी त्याग कर रही हूँ। तो सती ने अपना शरीर त्याग दिया और शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उसने संकल्प किया कि मैं जन्म जन्म में उनकी पत्नी हूँ, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे पिता को मैं नहीं चाहती हूँ। और जब शिव जी ने ऐसा सुना तो शिव जी को जो है फिर क्रोध आया, तो उन्होंने वीरभद्र को पैदा किया अपने जटा उखाड़ करके और आदेश दिया कि दक्ष का वध कर दो और दक्ष के यज्ञ को भी विध्वंस कर दो। तो दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया और जो दक्ष के पक्ष में जो ब्राह्मण लोग थे, देवता लोग थे, जो यज्ञ में भाग ले रहे थे, तो उनके भी अंग भंग कर दिए शिव जी के गणों ने, है ना। और सब जो है ब्रह्मा जी के पास जब आते हैं तो उनकी सब बुरी हालत थी, है उनका शरीर जो है खूब घायल था और अंग भी जो है कुछ भंग हो गए थे। तो उस समय जो है ब्रह्मा जी के पास आए, सब बुरी हालत में ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, तो ब्रह्मा जी ने उस विषय में विस्तार से बोलना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी जानते थे पहले से ही कि अपराध जो दक्ष कर रहा है और शिव जी को नहीं बुला रहा है और बाकी सबको बुला रहा है, तो शिव जी को अपमान करने का ही एक उद्देश्य था उसका, यज्ञ करने का उद्देश्य ही था कि शिव जी को अपमानित करना है। इसी शिव जी को ना बुला करके सबको बुलाया कि सब लोग जानें, सब लोग देखें कि शिव को मैंने अपना शत्रु माना है दक्ष। तो यज्ञ भी जो है एक गलत उद्देश्य से यज्ञ हो रहा था, तो भगवान विष्णु ऐसे यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, तो भगवान विष्णु नहीं गए, ब्रह्मा जी भी नहीं गए, है ना। अब ये जब परिणाम हुआ तो सब देवता लोग जब आए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों का अपमान करते हो तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते, तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अब समझो इस बात को, तुम लोगों ने शिव को भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, शिव को भाग भी नहीं दिया यज्ञ का, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव जितने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त लोक और प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विशेषकर हाल में ही अपनी प्रियतमा के निधन के कारण वे बहुत दुखी हैं और दक्ष के कटु वचनों से बहुत मर्माहत हैं। दक्ष ने बहुत उल्टी उल्टी बातें बोली सबके सामने शिव जी को, जिस समय प्रजापतियों की सभा हुई थी, तो दक्ष ने जो है शिव जी की निंदा की थी शिव जी के सामने और सब प्रजापतियों के सामने, और अब जो है यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया या शिव जी को निमंत्रित नहीं किया और यज्ञ किया, तो शिव जी का जो है दो प्रकार से अपराध हुआ, एक तो उनकी निंदा सबके सामने की और दूसरा यज्ञ का भाग नहीं दिया, उनको निमंत्रित नहीं किया, हैं, और तीसरा उनकी पत्नी का भी देहांत, उसका भी कारण दक्ष ही जो है कारण है कि उनकी पत्नी ने शरीर छोड़ा। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याण उनका कल्याण इसी में होगा कि तुरंत उनके पास जाकर के उनसे क्षमा मांगो। और वो महात्मा हैं, महापुरुष हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे तुम्हें देख करके उनका गुस्सा बढ़ जाएगा और मारना शुरू कर देंगे तुमको। अगर तुम जो है हैं सच्ची भावना से आत्मसमर्पण करोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम को जो है वो दंड देंगे, कुछ क्रोध करेंगे, ऐसे वो नहीं है, वो तो महापुरुष हैं शिव जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ना तो मैं स्वयं, ना इंद्र और ना ही जितने देवता मुनि हैं जान सकते हैं कि शिव जी कितने शक्तिमान हैं, ना मैं जानता हूँ। ब्रह्मा जी के मैं भी नहीं जानता शिव जी की शक्ति कितनी है, और जितने देवता हैं और ब्राह्मण हैं वो भी नहीं जानते। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों पर अपराध करने का साहस करेगा? तो तुम लोग नहीं जानते थे इसलिए अपराध करते। तो ब्रह्मा जी क्यों नहीं गए उस यज्ञ में? कि शिव जी का अपराध होगा, क्योंकि उनको पता है शिव जी का अपमान करने के लिए वो बुला रहा है। तो ब्रह्मा जी तो पिता हैं दक्ष के, लेकिन वो नहीं गए। और बाकी जितने लोग गए ये जानते हुए भी कि शिव जी से उसका जो है द्वेष है, तो भी यज्ञ में गए कि चलो हमको तो बुला रहे हैं, हमारा तो अच्छा सत्कार हो रहा है, तो सत्कार पाने के लिए चले गए, है ना। तो वे सभी जो है अपराधी हैं इस प्रकार से। इस प्रकार समस्त देवताओं पितरों के अधिपतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा जी ने उन सबों को अपने साथ लिया और शिव जी के धाम कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। सयत्थमादिश्य सुरान जस्तुत समन्विता पितृभेश प्रजेशान निलियम पुरा दुसहा कैलाश मद्री प्रवरम प्रियम प्रभो। फिर आगे तो कैलाश पर्वत का बहुत सुंदर वर्णन है, तो इसको मैं छोड़ करके कथा में आता हूँ कि कथा फिर आगे किस तरह से चलती है। कि शिव जी को देखा सब देवताओं ने, शिव जी चारों कुमारों जैसे मुक्त पुरुषों से घिरे हुए बैठे हैं और बहुत गंभीर हैं, बहुत शांत हैं। विद्या तपस्या योग के पथ में जो है स्थित हैं और सिद्धि मार्ग के स्वामी हैं, समस्त जगत से भिन्न हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण अत्यंत कल्याणकारी हैं। विद्या तपो योग पथम आततम तमधीश्वरम चरंतम विश्वसुरदम वात्सल्यालोक मंगलम। सब तात्पर्य में बहुत प्रभुपाद ने जो है बातें समझाई हैं, शिव जी के बारे में बातें समझाई हैं। मृग चर्म धारण किए हैं और तपस्या में लगे हुए हैं, शरीर में भस्म लगाने से संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे हैं, जटाओं में आधा चंद्रमा है। लिंगम जटा प्रसाभीष्टम भस्म दंड जटा जिनम अंगेन संध्या प्रेरुचा चंद्रलेखाम च विभ्रतम। कुशा के आसन पर बैठे हुए हैं और सबों को विशेष रूप से नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे हैं। उपविष्टम दर्भमय्याम वृष्याम ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोचंतम पृच्छते श्रृण्वताम सताम। नारद जी सुनने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे सज्जन है नारद जी, है ना। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा है और बायां हाथ बाईं जंघा पर रखा है। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ी है और आसन वीरासन कहलाता है जिस पर वो बैठे हैं, और उंगली तर्क मुद्रा में है। हाँ, ये तर्क मुद्रा ज्ञान मुद्रा ये है। कृतोरो दक्षिणे सव्यम पाद ब्रह्म च जानुनी ब्राहुम बाहुम प्रकोष्ठे क्षमालाम आसीनम तर्क मुद्रया। समस्त मुनियों और इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को सादर प्रणाम किया। शिव जी ने केसर के वस्त्र धारण कर रखे हैं और समाधि में लीन हैं, समस्त साधुओं में अग्रणी हैं। तम ब्रह्म निर्वाण समाधि माश्रितम उपाश्रितम गिरिशम योग कक्षाम सलोक पाला मुनियो मनु नाम आद्यम मनु प्रांजलिया प्रणेमुहु। शिव जी के चरण कमल देवताओं और असुरों द्वारा समान रूप से पूजनीय है, फिर भी वे अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा जी भी हैं तो तुरंत खड़े हो गए। फिर इन्होंने सोचा कि देखो मेरा सम्मान कर रहे हैं लोग, नहीं, जैसे ब्रह्मा जी को देखा अपने से बड़े तुरंत खड़े हो गए, है ना। ये नहीं है कि अब वो ये देखेंगे देखो ये लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं तो मैं क्यों खड़ा हूँ, ब्रह्मा जी को देखा तो तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। तो वामन देव भगवान है, पिता तो जो है उनके भक्त हैं, लेकिन वामन देव भगवान होते हुए अपने पिता भक्त के जो है चरण कमल छू दें। तो शिव जी की भी स्थिति बहुत ऊंची है ब्रह्मा जी से, यानी ब्रह्मा जी पिता हैं, तो ब्रह्मा जी के चरण कमल छुए नमस्कार किया ब्रह्मा जी को। सतोपलभ्य गयमात्म योनिम सुरा सुरेशर अभिवंदितांग्री उत्थाय चक्र शिरसाभिवंदनम अरहत्तमा कश्य यथैव विष्णु। शिव जी के साथ जितने भी ऋषि नारद आदि बैठे हुए थे उन्होंने भी ब्रह्मा जी को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर शिव से ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिव, मैं जानता हूं कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता हैं, जगत के माता पिता हैं और इस जगत से भी परे परब्रह्म है, मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। जाने त्वामीशम विश्वस्य जगतो योनि बीजयो शक्ते शिवस्य च परम यत्तन ब्रह्म निरंतरम। हे प्रभु, आप अपने विस्तार से इस नृसिंह जगत की सृष्टि पालन और संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाती है और फिर अंत कर देती है। तो मेरे भगवान ने तन शिव शक्तियो स्वरूप विश्वम सृजसी पार्षदी क्रीडन उर्ण पटो यथा। तात्पर्य प्रभुपाल ये लिखते हैं कि भगवान विष्णु शिव की मूल स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, भगवान विष्णु और शिव की मूल स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, तो भी शिव भगवान विष्णु से भिन्न है। यहाँ ये उदाहरण दिया गया है, दही में जो दूध है वो दूध से जिसे दही बना है भिन्न नहीं है। तो भिन्न नहीं है लेकिन तो भी समान भी नहीं है, इसलिए शिव जी को विष्णु के समान हम नहीं मानते, लेकिन शिव जी विष्णु से भिन्न भी नहीं है। इसे दही दूध के समान नहीं है लेकिन दूध से अलग भी नहीं है ना। तो इसी प्रकार से हे प्रभु, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य और आर्थिक विकास कर सकते हैं। आपकी विधि से चारों वर्णों और आश्रमों को सम्मानित किया जाता है, अतः ब्राह्मण इस प्रथा का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। हे परम मंगलमय प्रभु, आपने स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक और निर्गुण ब्रह्म लोक को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य बनाया है। इसी प्रकार जो दुराचारी हैं उनके लिए इतने घोर नरकों की सृष्टि की है तो भी कभी कभी ये गंतव्य उलट जाते हैं, इसका कारण समझ पाना कठिन है। जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं, फलतः वे प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं, वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। हे प्रभु, यदि कहीं भगवान की दुर्लंघ माया से पहले से मोहग्रस्त संसारी लोग कभी कभी अपराध करते हैं तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को नहीं लेते, ये जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप करते हैं, वो उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता है। हे प्रभु, आप परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ हैं और जो उसी माया के द्वारा मोहित और सकाम कर्मों में लिप्त हैं उन पर कृपालु होइए और कृपा कीजिए। भवान तो पुंसा परमस्य मायया द्वंद्वया स्पृष्ट मते समस्त त्रिगं तया हतात्म स्वनु कर्म चेता स्व अनुग्रहं कर्तुम अर्हसि प्रभो। हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं और फल प्रदान करने वाले हैं, दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है, अब आप जो आवश्यक हो करिए और अपना उचित भाग भी प्राप्त कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कुर्वद्धुरस्योद्धरणं हतस्य भो त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापते नयत्र भागं तव भागिनो ददुः कुयाजिनो येन मखो न नीयते। हे देव, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता दक्ष को पुनः जीवन दान मिले। राजा भग देवता को उनके नेत्र मिल जाएं, भग देवता की आंखें फोड़ दी थी तो उनको नेत्र मिल जाएं, और भृगु को उनकी मूछें मिल जाएं, मूछें उखाड़ दी थी भृगु मुनि की, और पूषा को उनके दांत मिल जाएं, पूषा देवता के दांत तोड़ दिए थे। जीवताद्यंजमान ओयम प्रपद्येताक्षणे भगः भृगोस्म श्रोण रोहंतो पोषणो दंता स पूर्ववन। हे शिव, जिन देवताओं और पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा छत विच्छत हो चुके हैं वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। देवानाम भंग गात्राणाम ऋतुजाम चायुधास्म भवतानुगृहीतानाम आशुमन्योस्तुरान्वितम त्वनातुरम। हे रुद्र, आपका आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण कीजिए और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा कीजिए। एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो धरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पताम अन्य यज्ञहं। यानी जो यज्ञ में बचता है शेष वो आपका भाग है। ब्रह्मा जी ने रुद्र को जो है यज्ञ का भाग निश्चित कर दिया है कि यज्ञ के अंत में जो कुछ भी सामान बच रहता है वो आपका ही भाग है, ये आपका भाग है। तो आप जो है अब यज्ञ को पूरा कीजिए। तो फिर बाद में जो है शिव जी बोलते हैं, शिव जी कहते हैं कि हे पूज्य पिता, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता, क्योंकि ये देवता बालकों के समान अल्पज्ञानी हैं, अतः मैं इनके अपराधों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो उन्हें रास्ते पर लाने के लिए ही दंडित किया है। शिव जी क्या करें, सही रास्ते पर लाने के लिए दंडित किया है, अपराध की कोई मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। नागम प्रजे से बालानाम वर्णय नानुचिंत देव माया भूतानाम दंडस्तत्र धृतो मया। दक्ष का सिर पहले से जल का भस्म चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। और भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से अपना भाग देख पाएंगे, उनको नेत्र नहीं मिलेंगे। दंड भी जो है कुछ तो मिलना ही चाहिए, है ना। तो यज्ञ दक्ष को भी जो है पूरा क्षमा नहीं किया उन्होंने, कुछ दंड तो मिलना ही चाहिए। तो दक्ष को सिर मिलेगा किसका, बकरे का, है ना। और पूषा जो है भग जो देवता हैं तो उनकी आंखें फोड़ी गई हैं, तो मित्र देवता के आंखों से वो देख पाएंगे। और पूषा देवता के दांत टूट गए हैं, तो पूषा देवता जो है यजमान के दांतों से चबाएंगे, यजमान जो खाएगा तो वही पूषा देवता को मिलेगा खाने के लिए। पूषा देवता अपने यजमान के दांतों से खाएंगे, और यदि अकेले चाहें तो सत्तू की बनी लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा, उनको दांत नहीं मिलेंगे। सत्तू की लोई खा सकते बिना दांत से ना। किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है वे सभी प्रकार के चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं उन्हें अश्विनी कुमार के बाहों से काम करना होगा, उनको हाथ नहीं मिलेंगे अश्विनी कुमार के हाथों से। और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें पूषा के हाथों से काम करना होगा, पुरोहितों को भी उसी प्रकार कार्य करना होगा, और भृगु को बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी, उनको दाढ़ी जो है अब मिलेगी लेकिन बकरे की दाढ़ी मिलेगी, तो कुछ दंड तो मिलना ही चाहिए। तो इस तरह से शिव जी ब्रह्मा जी से बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अपना पुत्र जान करके, क्योंकि जन्म हुआ है तो पुत्र जान करके उनको नाम दिए और पत्नियाँ दी और स्थान दिए और आदेश दे रहे हैं कि संतान उत्पन्न करो। और यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी अपने समान आदर दे रहे हैं शिव जी को, या अपने से ज़्यादा आदर दे रहे हैं शिव जी को। तो ये विधि है कि जब बच्चा जो है 15 साल का हो जाए तो फिर पिता जो है उसको अपने बराबर सम्मान देता है, और जब पुत्र है तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं आश्रित है पिता के, तो पिता जो है उसको स्नेह करता है, लेकिन जब पुत्र अपने पैरों खड़ा हो जाता है तो पिता अपने समान उसको आदर देता है। ये विधि है, ठीक है ना। तो आज के श्लोक में एक ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप प्रजापति हैं। अच्छा, यहाँ कुछ कागज होना चाहिए, क्योंकि फिर दोबारा ढूंढना पड़ेगा, दोबारा निकालना पड़ेगा, कुछ बुक मार्क होना चाहिए इसमें। बार आज का जो श्लोक है ये है, ये है, प्रजानाम असि यत पति ही। आप प्रजाओं में चूंकि पति हैं, प्रजा के पति हैं, तो प्रजापति का मतलब होता है, सृष्टि के समय ब्रह्मा जी ने कुछ लोगों को प्रजापति बनाया था, तो प्रजापति का मतलब है कि वो संतान उत्पन्न करें, तो ऐसी संतान उत्पन्न करें, अपने संतान को ऐसा प्रशिक्षण दें कि वे अपने जीवन को सफल बनाएं। केवल बच्चे पैदा करना नहीं होता है, विवाह का उद्देश्य बच्चे पैदा करना नहीं है, बल्कि ऐसे बच्चे जो कि कृष्ण भावना भावित हों, तो उसके लिए गर्भाधान संस्कार ये सब मतलब विधियाँ होती हैं, और बच्चा जो है जब जन्म लेता है उस समय भी संस्कार उसको दे। तो प्रजापति का मतलब होता है कि अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दे, ऐसा प्रशिक्षण दें जिससे कि वे अपने जीवन को सफल बनाएं और अगले जीवन में अपनी गति सुधारें। तो ये सब प्रजापति हैं। दक्ष भी प्रजापति हैं, मनु भी प्रजापति हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं शिव जी को कि आप भी प्रजापति हैं। लेकिन आगे चल करके जब शिव जी ने संतान उत्पन्न की तो वे सब जो है तमोगुणी थी, तो फिर ब्रह्मा जी ने मना किया कि नहीं नहीं आप मत उत्पन्न करो, ये तो विनाशकारी हैं, अभी तो सृष्टि का समय है कि सृष्टि और बढ़ाई जाए, ये तो सृष्टि को विनाश करने की वाले हैं सब, तो आप बंद करो, आप तपस्या में लगाइए अपना। तो फिर शिव जी ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके तपस्या करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ बातें हैं जो आज के श्लोक से हमने आपको समझाई हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी, नहीं शिव जी वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ हैं जैसे बताया गया है, तो ऐसे तो 12 महाजन हैं, तो 12 महाजन सर्वश्रेष्ठ हैं, स्वयंभू नारदा शंभू कुमार कपिलो मनु और ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी हमारे और ज़्यादा निकट हैं क्योंकि संप्रदाय के हमारे आचार्य तो ब्रह्मा जी हैं, तो हम ब्रह्मा जी को भी नहीं रखते आल्टर में। हम आल्टर में किन को रखते हैं? जो परम्परा में हमारे जो आचार्य हैं और कुछ और उनके ऊपर जो आचार्य हैं, तो 3-4 जो पीढ़ियां हैं उनके उतना ही हम रखते हैं आल्टर में, ठीक है ना, जो हमारे बहुत निकट हैं, है ना। तो हम किनको रखते हैं आल्टर में? प्रभुपाद को रखते हैं, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी, फिर उनके गुरु भक्तिनाथ ठाकुर और उनके गुरु जगन्नाथ दास। कितने हैं? 5। 5 काफ़ी हैं, नहीं तो ऐसे रूप गोस्वामी ने भी कितना कार्य किया, उनके भी ग्रंथ है, 6 गोस्वामी हैं, तो 6 गोस्वामियों को भी चित्र रखा जाता है। लेकिन अगर आप जो है ऐसे देखेंगे तो शिव जी से भी आगे बढ़े हुए हमारे जो है और भी बहुत से वैष्णव हैं जो गोपी भाव में है, मंजरी भाव में है, तो शिव जी से भी आगे हैं वो है। लेकिन हम सबको आल्टर में नहीं रख सकते। नारद जी भी जो है बहुत है दिव्य हैं, तो हम सबको नहीं करते रखते हैं आल्टर में, ठीक है ना। कृष्ण की गोपियां हैं, अष्ट सखियां हैं, सबको नहीं रख सकते ना। और हाँ जी, आप ये जो है विवाह करना इंद्रिय तृप्ति के लिए और बच्चे पैदा ना हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये पाप कर्म बन जाता है, क्योंकि जिस समय सहवास होता है तो उस समय कोई जीवात्मा स्त्री के गर्भ में आने के लिए वो जो है अपना आश्रय ढूंढता है, तो उस समय उसको ना आने दिया जाए। उसी प्रकार से जैसे गृहस्थ जीवन में अतिथि का सम्मान किया जाता है, अतिथि और कोई अतिथि आए हैं वो आश्रय पाने के लिए, क्योंकि प्राचीन काल में ये सब गेस्ट हाउस वगैरह नहीं होते थे और रास्ते में बिस्लेरी की बोतलें भी नहीं मिलती, पानी भी नहीं मिलता था। कहीं पर पानी मिल गया, कोई कुंड में पानी मिल गया तो पानी पी लिया, नहीं तो पानी भी नहीं मिल रहा है, भोजन भी नहीं मिल रहा है। और पहले ज़्यादा से ज़्यादा पैदल ही यात्राएं करते थे, हजारों किलोमीटर की यात्रा लोग पैदल करते थे। तो ये थे कि अतिथि कोई अगर आए, अतिथि का मतलब है कि आप उसको जानते भी नहीं और कौन आएगा और किस समय आएगा आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चल रहा है और वो थका हुआ है तो उसको कुछ विश्राम चाहिए, कुछ भोजन चाहिए, तो आप विश्राम दो, भोजन दो, तो आप उसको मना करते हैं, तो वो जो है आपके सब पापों को लेकर के और अपने आपके पुण्य लेकर के और अपने पाप दे करके चला जाता है। आपके जितने पुण्य हैं वो ले लेता है और अपना पाप आपको दे देता है और चला जाता है। अभी तो वो स्थिति नहीं है कि आप अतिथि, अतिथि अब वैसे नहीं अतिथि, क्योंकि सबके पास जो है अपना खाने पीने का बंदोबस्त होता है, नहीं तो कहीं भी खा लेंगे पी लेंगे, अपना सब मिलता है ना। और गाड़ी से चलते हैं, बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, जल्दी यात्रा भी पूरी कर लेते हैं, तो ऐसी अब अतिथि की वैसी बात नहीं है। प्राचीन काल में पैदल ही चलना होता था और हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल चलना है, और कोई फ़ोन भी नहीं होता था कि अपनी पत्नी को सूचना दे कि मैं यहाँ पर हूँ, और अगर मर गया हाँ तो उसकी पत्नी को उसके घर वालों को पता भी नहीं चला कि कहाँ मर गया वो। तो ये अतिथि, इसलिए अतिथि का जो है बहुत महत्व होता था, सम्मान दो अतिथि को और उसको जो है अच्छे शब्दों से उसका सत्कार करो और उसको जो है विश्राम करने के लिए जगह दे दो, उसको भोजन के लिए कुछ दे दो तो ये जो है मतलब उसी प्रकार से वो भी अतिथि है कि जब पति पत्नी सहवास करते हैं तो कोई जीवात्मा जो है आश्रय ढूंढ रहा है, अपना आश्रय लेने के लिए आ रहा है और उसको मना कर दिया, उसको आश्रय नहीं दिया। जैसे अतिथि के सामने दरवाजा बंद कर दिया, अतिथि जो है विश्राम करने के लिए आ रहा है, भूखा है, थका है, प्यासा है, तो उसको आपने नहीं दिया तो वो जो है आपके सब पुण्य लेकर के चला जाता है और अपने पाप दे देता है, है ना। तो ये वही स्थिति है, ठीक है ना। और कोई वो तो पहले निकल चुका, क्योंकि ये उसमें प्रभुपाद ने लंबा तात्पर्य भी दिया है, ये श्लोक संख्या 11 भी है, श्लोक संख्या भी 11 है, ये तो हम 12 13 14 श्लोक है, ये श्लोक संख्या 11 है, उसमें ब्रह्मा जी ने जो है 11 स्थान बतलाए हैं और प्रभुपाद ने उनकी व्याख्या भी की है। स्थान के नाम है हृदय, इंद्रियां, प्राण वायु, आकाश वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या, ये 11 स्थान है। तो इसको प्रभुपाद समझाते हैं कि इसमें भी रुद्र का या क्रोध का सिद्धांत है, इन चीजों में रुद्र की उपस्थिति है इन चीजों में भी।
अभी 11 कौन जो है ये अवतार है, क्योंकि आपने बोला कि 11 भाई की पत्नियां भी 11, तो उनके 11 अवतार हैं।
हाँ, 11 जो है उनके ही विस्तार है, ये 11 रुद्र जो है ये प्रलय के समय ये सृष्टि का विनाश करते हैं, तो 11 रुद्र जो है, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, गीता में भगवान के रुद्रों में शंकर मैं हूँ, है ना। तो मूल जो रुद्र हैं वो शंकर ही हैं, हैं, लेकिन उन्हीं के विस्तार हैं 11 रुद्र कहलाते हैं, ठीक है ना, रुद्रों की संख्या 11 है।
हनुमान जी भी भगवान में रुद्र,
हाँ वो भी, हाँ ऐसा बताया गया है। और कुछ? हाँ गोपेश्वर प्रभु बोलिए। हाँ उसमें भी आते हैं नारद जी, नारद जी जो है चार कुमारों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर ऐसा है। वैसे तो भागवत महात्म्य भी आता है कि चार कुमारों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत सुनाई और नारद जी बहुत चिंतित थे कि भक्ति देवी का कष्ट कैसे दूर हो, तो चार कुमारों ने नारद जी को कहा कि आपने तो व्यास जी को, जब व्यास जी भी परेशान थे कि कलियुग के प्राणियों का कैसे लाभ होगा, तो आपने भागवत लिखने की उनको आज्ञा दी थी, तो वही जो है विधि इस समय भी सब कलियुग के प्राणियों के लिए और भक्ति देवी का भी कष्ट इसी से दूर होगा, तो आप भागवत सुनिए। नारद जी ने भागवत सुना चार कुमारों से, तो कुमार संप्रदाय में भी नारद जी आते हैं। ठीक है, और कोई? धन्यवाद। अच्छा हाँ, आखिरी प्रश्न है। पुत्र भी मना कर, पिता पिता में स्वाभाविक स्नेह है अपने पुत्र के प्रति, और वो स्वाभाविक स्नेह इतना प्रबल होता है कि उसके कारण पुत्र जो कुछ भी करता है तो पिता को जो है वो उसका फल मिलता है। अगर पुत्र जो है शुद्ध भक्त बन जाए तो पिता का भी उद्धार कर देता है और अपने ऊपर की भी सात पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तो ये ऐसा खून का संबंध बना हुआ है कि ऐसा है, पिता में स्वाभाविक है। हिरण्यकश्यप भी जो है प्रहलाद जी का पिता है, तो प्रहलाद जी चूँकि भक्त बन गए हैं तो उसको बहुत दुख है, लेकिन अपने हाथ से अपने पुत्र की हत्या नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसका स्नेह है, इसलिए कहता है कि मेरी आंखों से दूर ले जाओ और इसकी हत्या कर दो। जैसे मेरी आप मेरी उंगली है तो इसमें विष हो गया है, तो अब मैं अपने हाथ से नहीं काट सकता, मैं किसी को बोलूँगा भी काटो, और मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ आँखें बंद करके, और बड़े कष्ट से अपनी उंगली कटवाता हूँ। उसी वजह से हिरण्यकश्यप भी प्रहलाद की हत्या कराना चाहता था, लेकिन बड़े कष्ट से उसने कहा कि इसकी हत्या कर दो, क्योंकि पूरे असुरों के समाज को ये दूषित करेगा, क्योंकि ये भक्ति का जहर इसके अंदर आ गया है, विषैला हो गया है, तो इसलिए वो था ऐसा, है ना। लेकिन बाद में फिर मजबूर हो गया कि अपने हाथ से पुत्र की हत्या करना करने तैयार हो गया, लेकिन तो भी वो यही कह रहा था कि मैं तेरे सामने तेरे भगवान को पहले मारूंगा, तो तेरा भगवान बचाए, मैं तेरे उसको मार रहा हूँ, तो पुत्र को मार नहीं रहा था, कह रहा था मैं तुझको मार रहा हूँ, मैं तेरा सिर अलग कर रहा हूँ, तेरा आए भगवान बचाने के लिए, तो पहले मैं तेरे सामने तेरे भगवान को मारूंगा, फिर मैं तुझको मारूंगा। तो उसका इरादा यही था कि प्रहलाद को देखा करके वो प्रहलाद के भगवान को पहले मारेगा, तो तेरा भगवान आए तुझे बचाने के लिए, मैं तेरा सिर काट रहा हूँ। तो स्नेह तो अपने पुत्र में था ही उसका, फिर भी और उस स्नेह के कारण ही उसका उद्धार हो गया, है ना। तो ये पिता का स्नेह स्वाभाविक है, ये ऐसा देखा जाता है। अब किसी का ना हो और वो एक अलग स्थिति है, तो वो अलग विचार करने वाली बात है कि किसी का ना हो तो अलग बात है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री पंचतत्व की जय।